नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
India's position on the Indus Waters Treaty.
सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
India's development assistance.
बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिली इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।